بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق کا بحران اور علاقائی اور عالمی طاقتوں کی سازش، اس موضوع پر گفتگو کی۔ مگر پہلے ہم یہاں پر آپ سب کی خدمت میں بہار قرآن ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مناسبت سے دلی ہدیے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سبھی لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ پر برکت و مبارک کے الہی دسترخوان سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو ملاحظہ کیجئے، انداز جہاں قرآن اپنے 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، اور آج جو ایک تازہ ترین پیش رفت ہوئی یہ کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تکریت جیسے اہم شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اس شہر کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور صبح بابل سے یہ خبر ہے کہ عراقی فوج نے اور عوامی رضاکار فورس نے مشترکہ کارروائی کر کے دہشت گردوں کی متعدد گاڑیوں کو جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھیں تباہ کر دیا، اور اس میں سوار سبھی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ادھر سامارا سے بھی اطلاعات ہیں کہ دسیوں دہشت گردوں کو عوامی رضاکار فورس اور اسی طرح عراقی فوج نے ہلاک کر دیا ہے، اور صبح صلاح الدین کے ضلع العصحاقی میں تمام تر سرکاری ادارے، دفاتر اور پولیس مراکز دوبارہ فعال اور سرگرم ہو گئے ہیں، اور اس علاقے میں معمولات زندگی پوری طرح سے بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن اس درمیان علاقائی اور عالمی طاقتوں کی سازشیں عراق کے تعلق سے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عراق کا دورہ کیا، انہوں نے جہاں بغداد میں عراقی حکام سے بات چیت کی، وہیں انہوں نے عراقی کردستان کے مقامی انتظامیہ کے سربراہ مسعود بارزانی سے بھی ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد برطانوی وزیر خارجہ بھی پیچھے نہ رہے اور وہ بھی عراق پہنچے، اور انہوں نے بھی کردستان کے مقامی انتظامیہ کے سربراہ مسعود بارزانی سے ملاقات کی۔ ادھر مقامی کردستان کی انتظامیہ کے وزیر اعظم نے انقرہ میں ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سے بھی ملاقات کی ہے، اور صہیونی حکومت کی کابینہ نے تو انتہائی آرزو اور دلی ان کی جو تمنائیں ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے عراق کا علاقہ کردستان عراق سے الگ ہو جائے۔ اور اس درمیان خود جدہ میں امریکی وزیر خارجہ نے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے، اور وہاں مقیم شام کی حکومت کے مخالفین کے اتحادی دھڑے کے سربراہ احمد جربہ سے بھی ان کی ملاقات کی ہے۔ یہ ساری سازشیں تو اپنی جگہ، لیکن عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے عراق کی نو منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، وزیر اعظم کا تقرر عمل میں لایا جائے، اسپیکر کا تقرر عمل میں لایا جائے، اور حکومت جو نئی بننے والی ہے وہ جلد سے جلد اپنا کام شروع کرے تاکہ عراق میں دہشت گردوں کا پوری سختی کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور عراقی عوام کو امن، تحفظ اور انہیں جینے کی زندگی کے طریقے اور امکانات مہیا کرائے جائیں۔ یہ تو رہی عراق کی صورتحال، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب ان چلتے ہیں اب سیدھے دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی شکیل شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی شکیل صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ 19 دن گزر چکے ہیں تازہ بحران کو، بحران تو کئی سال سے جاری ہے عراق میں، لیکن جو ایک تازہ بحران مسلط کیا گیا ہے عراقی عوام پر، اس کو آج 19واں دن ہے۔ اب تک جو فوج کی کارکردگی رہی ہے اور ساتھ میں جو عوامی رضاکار فورس لاکھوں کی تعداد میں فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، ان کی کارکردگی کیسی رہی؟
دیکھیں فی الحال تو یہ لوگ جب سے سامنے آئے ہیں اس وقت سے لگ رہا تھا کہ یک طرفہ طور پر جنگ ہو رہی ہے، اور جیسا کہ عراقی فوج نے بالکل خالی کر دیا وہ علاقوں کو، لیکن اب اس میں کچھ جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور چونکہ یہ بالکل غیر متوقع طور پر ہوا تھا، سب لوگوں کا ذہن سیریا میں لگا ہوا تھا، ہر آدمی شام کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ بالکل غیر متوقع طور پر انہوں نے حملے کر کے، اور پھر جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بھی دکھایا گیا کہ جو بعض پارٹی کے جو لوگ ابھی فوج میں شامل ہیں ان کی غداری کی وجہ سے، اور جو انتظامیہ میں شامل تھے ان کی غداری کی وجہ سے یہ آسانی سے داخل ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور جدید اسلحے ہیں، جدید گاڑیاں ہیں جو ان کو فراہم کی گئی ہیں خطے کے ممالک کی جانب سے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ कब्जा करके 5-6 शहरों में, और एक इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, और इस्लामी हुकूमत का ऐलान करने के बाद उसको जो इनको इनकी परवरिश करने वाली हुकूमतें हैं सऊदी अरब और कतर और जॉर्डन वगैरह, वो इनको मंजूरी दे देंगी और तस्लीम कर लेंगी, और तस्लीम करने के बाद वहाँ पर एक नई हुकूमत कायम हो जाएगी, और उसके बाद उनके लिए सीरिया का मसला आसान हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो इन्हीं ने प्रोग्राम बनाया था वो इतना आसान तो प्रोग्राम नहीं था, और उनको इसका अंदाज़ा नहीं था कि अभी जवाबी कार्रवाई कहाँ से होगी, कैसे होगी। आपको मालूम है कि खाली वहाँ की इराकी फ़ौज ही नहीं लड़ रही है इस वक्त, वॉलंटियर्स और मुख्तदा सदर ने भी अपने फ़ौजियों को उतारने के लिए कहा है, और वो भी फ़ौज के साथ मिलकर कर रहे हैं, और दूसरे भी रजाकार हैं, जैश महदी के अलावा भी बहुत से ऐसी तंजीमें हैं कि जो लड़ने के लिए तैयार हैं और आमादा हैं। ज़ाहिर है कि जब इनका जवाबी कार्रवाई शुरू होगी तो इनके लिए मसाइल सख्त पैदा होंगे, और अभी इनको पता चल रहा है जो तिक्रीत में हुआ इनके साथ, कि तिक्रीत में जो जिस तरीके से इन्होंने मजालिम किए थे, और तिक्रीत में सोते हुए लोगों को जिस तरीके से उठा के इन्होंने मार दिया, और ये कहा कि फ़ौजी हैं, जबकि वो कपड़ों से आप देखिए जो ड्रेसेस से लग रहा है कोई भी आदमी फ़ौजी लिबास में नहीं था जिनको मारा है, 1600-1700 आदमियों को ले जा के इन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। तो अब शुरुआत हुई है तिक्रीत से, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इराकी अवाम की जो ये कोशिश है ये इनके लिए कामयाब होगी। लेकिन मैं कहूँ देखिए इराक़ के अवाम के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें आज से तो जारी है नहीं, कई लाख आदमी बम धमाकों में मारे जा चुके हैं। ये तो बहुत बेहतर हुआ कि ये सामने आ गए, ये जो हमेशा अंदर छुप कर वार करते थे, और ये जो इनकी एक वो था कमीनगी जो इनकी होती थी कि ये छुप कर वार करते थे और बम रख के चले जाते थे और धमाके करते थे, कम से कम एक मरतबा इन्होंने हिम्मत तो की कि सामने आकर लड़ें, तो इनको अपनी औकात भी मालूम हो जाएगी और अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी इनको हो जाएगा इस लड़ाई में कि इनमें कितनी ताकत है और ये क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो सामने लड़ें आकर वो बेहतर है, इससे बनिस्बत ये कि शहरियों को निशाना बनाए। आपको मालूम है बगदाद को लहूलहान कर दिया, सामरा को लहूलहान कर दिया है करबला में, और उसके मजाफात में इन्होंने क्या क्या कहर नहीं ढाए। तो उसके अलावा भी कुर्दिस्तान के इलाकों में भी बम फोड़े इन लोगों ने, सब सब करते चले आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ जो कुछ किया इन्होंने वो ठीक हो गया है, और अल्लाह ने इनको अक्ल पर इनकी पत्थर फेंक दिए थे ताकि इनका अंजाम इनका जो हो वो जाके उन लोगों के हाथ में हो कि जो इनको सख्त सजाओं से कर सकते हैं, इनकी अक्लों पर पत्थर पड़े थे जो सामने आ गए, और इंशाल्लाह इनका मुकद्दर सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई मैं नारेबाजी या जज्बाती बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि इराक़ के अवाम मजबूत हैं, इराक़ के लोग मजबूत हैं, इराक़ के अवाम में जज्बा है, और वो इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी इनका जो सही मकाम है वहाँ तक पहुँचाएँगे, और इनको जितनी जिल्लत शाम में नहीं उठाना पड़ी उससे ज़्यादा जिल्लत इराक़ में उठाना पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आज उनका आपकी खिदमत में चलते हैं पाकिस्तान कराची जहाँ पर मौजूद हैं मुख्तदा मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम जनाब अली
जी। मुख्तदा मंसूर साहब, आप देखें कि 19 दिन पहले जब मूसल पर इन्होंने हमला किया उसके बाद से आज तक इनकी दरिंदगी और बरबरीत का सिलसिला बदस्तूर जारी। कहीं 1600-1700 नियत थे जवानों को लाइन में खड़ा करके एक साथ गोली मार दी जाती है, कहीं मूसल जैसे शहरों में ख़वातीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके अगवा करके उनके साथ इस्मत दरी की जाती है फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, कहीं 16 से 17 उलमाए अहले सुन्नत को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है, घरों को तबाह किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इंतहाई वहशीगरी का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है या मगरबी ममालिक जो इंसानी हकूक़ का दावा भरते हैं उनकी तरफ से एक भी मजम्मती बयान नहीं आया अब तक, क्यों?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए 19 दिन तो हम बज़ाहिर आज की सूरत हाल के तनाजुर में देख रहे हैं, लेकिन ये फितना तो उसी वक्त शुरू हो गया था जबकि इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को का खात्मा हुआ था और वहाँ पर जमहूरी निज़ाम को लाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये लोग अकलियत में थे और अकलियत में होने के सबब जमहूरी तरीक़ाकार से इनका इक्तदार पर आना मुमकिन नहीं था। लिहाजा आप देखिए कि जो सद्दाम दौर में इन्होंने जो मराहत हासिल की और जिस तरह इक्तदार पर यक तरफा गासिबाना कब्ज़ा रखा, उसके टूटने से और जमहूरियत के अमल में उसका टूटना लाजमी अमर था, लिहाजा उसके टूटने के नतीजे में जो बम धमाके और जिस तरीके से उन्होंने मकामात मुक़द्दसा की तौहीन की, वहाँ बम धमाके किए और उसके बाद मुसलसल ये चला अमल, लेकिन 19 दिन से ये बिल्कुल बरहना होकर अपनी पूरी सफाकी के साथ अपनी खारजियत के साथ रूटमा हो गए हैं और आवाम के सामने पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। लेकिन आपके जो सवाल में से एक चीज़ सवाल पोशीदा है कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा इस पर क्यों नहीं कर रही है, तो आप کہ علم میں یہ بات ہوگی اور لازمی طور پر ہوگی کہ 1991 میں بش کے بڑے یعنی والد صاحب جو بڑے بش تھے سینئر بش تھے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت عرب دنیا کا پورا نقشہ تبدیل ہونا تھا اور جس کے اندر عراق کی تقسیم بھی شامل تھی اور جو پہلی عرب کی جنگ 1990 میں ہوئی ہے اگر اس وقت کے آپ حالات کو دیکھیں اور ان کے بیانات کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور مغرب کی استعماری ریاستیں قوتیں یہ چاہتی تھیں کہ ان علاقوں کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سارا یہ پلان کیا لیکن انہیں عوام کے اتحاد کی وجہ سے مسلسل ناکامی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سیستانی نے بالکل درست کہا ہے کہ جو انتخابات ہوئے اس کے بعد پارلیمان کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور فوری طور پر نئی حکومت کی تشکیل کی جانی چاہیے تاکہ ان سازشوں کا قلاقمہ کیا جا سکے اور ان عناصر کو کہ جو غیر جمہوری طریقے سے ریاست پر قابض ہونے اور ریاست کو جبرن کسی ایک مخصوص مسلک کے تابع لانا چاہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانونی اور آئینی ایک طرح سے راہ ہموار ہو سکے۔
جی بہت شکریہ، چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر بیرسٹر طاہر واسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
طاہر واسی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل داعش کو دہشت گرد کہہ چکی ہے، امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی دہشت گرد کہہ رہا ہے، حتیٰ 16 جون کو جو سعودی عرب کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا، نام نہاد جو پارلیمنٹ ہے سعودی عرب ریاض کے اندر، اس نے بھی کہا تھا کہ ہم داعش سے جو عراق میں لڑ رہا ہے گروپ اسے اپنے کو الگ کرتے ہیں بلکہ وہاں کے سنیوں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی داعش سے ایک طرح سے انہوں نے بھی، اگرچہ وہی سب کچھ ہے، انہی کے پالے ہوئے ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن بہرحال ان کی بربریت کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں سے اپنی خفت کو چھپانے کے لیے سعودی عرب کی پارلیمنٹ نے بھی یہ بات کہہ دی۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کا میڈیا، امریکہ کا میڈیا دہشت گرد کہنے سے کیوں ہچکچا رہا ہے؟ کیوں ان داعش گروہوں کو جو درندگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کر رہے ہیں انہیں سنی مسلمان یا سنی ملیٹنٹ کا نام دے رہا ہے؟
جی شکریہ علی، آپ کو میں یاد دلواؤں کہ جی مشرق وسطی میں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسرائیل یہ کہتا ہے او ہو ہو جناب اگر یہ اس طرح سے ہو گیا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے فوراً سے امریکہ، اقوام متحدہ، برطانیہ اور ان کے جو اتحادی ہیں یہ اس جگہ جا کے وہاں پہ اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ واحد مسئلہ عراق کا ایسا مسئلہ ہے جس میں اسرائیل کو، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفننگ سائلنس تھا، بالکل خاموشی تھی، اسرائیل کچھ نہیں بول رہا تھا اس معاملے میں کہ جو آئی ایس آئی ایل جو وہاں پہ کر رہی ہے۔ ریسنٹلی 5 دن پہلے نتنیاہو نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ داعش کو اور ان تنظیموں کو ایران کے خلاف جو ہے متحد کرنا چاہیے، اور امریکہ کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس لڑائی سے جتنا دور ہو سکے دور رکھیں اور ان دونوں کو لڑنے دیں تاکہ یہ آپس میں ویک ہوں۔ اگر ہم اس بیان کو ڈائسیکٹ کر لیں تو اس میں آپ کے اس سوال کا جواب نظر آئے گا کہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ، امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس خطے میں ہر وہ کام ہوتا رہے جس سے اسرائیل کے قیام کو مضبوطی ملے، اور باقی جو کچھ مرضی ہو جائے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تمام تنظیمیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ تمام تنظیمیں ان کی اپنی ہی پیدا کردہ ہیں، ان کو اسلحہ انہوں نے فراہم کیا، ان کو پیسہ انہوں نے فراہم کیا، ان کی آئیڈیالوجی ان کے جو جاسوس ہیں انہوں نے بنائی، اب یہ ان کے خلاف کس طرح سے اپنا منہ کھول سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات رہی سعودی عرب کے بارے میں، تو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کچھ روز پہلے یہ عرض کی تھی کہ سعودی گورنمنٹ، قطر کی گورنمنٹ اور جو خلیج کی حکومتیں ہیں وہ اپنے آپ کو خفت مٹانے کے لیے یقیناً، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے علیحدگی کا اظہار کر رہی ہیں، سعودی عرب نے کی پارلیمنٹ نے بھی کیا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ انہی کے پارلیمنٹ کے ممبران، انہی کے جو سرکردہ وہاں کے کاروباری حضرات اور مخیر پیسے والے حضرات ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں داعش کو شروع سے آج تک۔ आखिर इनके पास जो इतना असलाह आया, इनके पास जो इतना पैसा आया, ये सिवाय इन खलीजी रियासतों के इन मेंबरान के और किसी ने नहीं दिया। तो यकीनन हुकूमतें तो अपने आप को खिफत मिटाने के लिए अपने आप को इनसे दूरी का इजहार कर रही हैं, लेकिन इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, इनको पैसा पहुंचा रहे हैं और इनके खिलाफ जो है कोई आवाज़ उठने नहीं दे रहे। अब रह गई बात जहां मैं बैठा हूं, जहां अमेरिका है, इनकी तो बुनियादी मसला ये है कि अगर ये इनको दहशतगर्द कहें तो इनको शर्म आएगी खुद इस बात पे कि ये हमने ही पाले हैं, ये इन्हीं के पाले हुए हैं। अगर आपके नाजरीन को इस इनके इस दाइश का जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाता है इस्लामिक स्टेट इन इस्लाम इन इराक एंड लवात, लवात में तो ये शामिल है, इसराइल का इलाका शामिल है, फ़लस्तीन का इलाका शामिल है, तो अगर ये वाकई तंजीम एक इस्लामिक रियासत कायम करना चाहती है मशरिक़ वस्ता में, तो ये कहते हैं कि हम जाके जॉर्डन में जॉर्डन के जो हुकूमत के सरबराहान हैं उनका सर कलम करेंगे, तो इसराइल को भी ख़तरा होना चाहिए। लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि ना वो कतर को ख़तरा महसूस होता है, ना सऊदी अरब को ख़तरा महसूस होता है, और जब तक इन ममालिक को ख़तरा महसूस नहीं होता, आपको मैं एक और छोटा सा वाक़िया दिलाऊं, देखिए जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो कितनी ही देर में अमेरिका वहाँ पहुँच गया, फौजें वहाँ पहुँच गईं, यूनाइटेड नेशन एक्टिव हो गई और तमाम यूरोप एक्टिव हो गया, क्योंकि इनके मफादात कुवैत के साथ वाबस्ता थे, इनके मफादात शिया सुन्नी लड़ाई के साथ वाबस्ता हैं, और चूंकि शिया सुन्नी लड़ाई इसराइल को फ़ायदा पहुँचाती है और इस तरह से वेस्ट को फ़ायदा पहुँचता है, अमरीका को फ़ायदा पहुँचता है, तो इसलिए अगर ये इनको दहशतगर्द कहेंगे तो इसराइल को फ़ायदे में नुकसान पहुँचेगा। तो ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात कहें जिससे ये दहशतगर्द हों, और ये दहशतगर्दी से भी कोई अगली नस्ल है जो ये वहाँ पे मौजूद है, ये खारजी हैं, ना ये शिया हैं ना ये सुन्नी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते के मुसलमान, खित्ते के सुन्नी भाई और ग्लोबल जो सुन्नी भाई हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि ये जो लोग ये लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि इसराइल कह रहा है कि इनसे शिया सुन्नियों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह शिया सुन्नी इससे मजबूत होंगे, और तकफीरी ग्रुप जैसा कि आपके दो मुबसरी ने कहा, इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, और इंशाल्लाह शिया और सुन्नी जिस तरह से तारीख में पहले भी एक मरतबा हुआ था अपने आप को इस खारजी ग्रुप से बेजारी का इजहार करेंगे और अलहदा हो जाएंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू मेहमानों से जारी है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, शकील शमसी साहब मौजूद हैं। शकील साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आज जी कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने फरमाया कि इराक़ में जो कुछ हो रहा है ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के मुखालिफिन से जंग है, इंसानियत की दरिंदगी से जंग है, मगरिब नवाज़ों की कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तरफदारों से जंग है, ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है। और अब इस्तेमारी ताकतों ने, साम्राज्य ताकतों ने इस तरह का हरबा अपनाया है कि मुल्कों के अंदर जाकर वहाँ की कौमों को आपस में लड़ाएं और अपने मफादात हासिल करें। तो जब ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है तो फिर इसे शिया सुन्नी की जंग बनाकर क्यों पेश करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए अली अब्बास साहब, मामला सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि शिया सुन्नी बनाकर पेश करने से बहुत से सुन्नी उनके साथ आ सकते हैं, उनको ये लगता है, लेकिन मुझे तो तरस आता है इराक़ के सुन्नियों पर। बहुत ही मजलूम कौम है इराक़ के सुन्नी इस वक्त, मूसल में ये लोग दरअंदाजी करते हैं, घुसते हैं और वहाँ का सुन्नी भागने पर मजबूर होता है। 18 लाख की आबादी में से 7 लाख आदमी भाग कर कुर्दी इलाके में चले जाते हैं। अगर वो सुन्नी हैं जिन्होंने हमला किया है तो ये सुन्नी भागे क्यों हैं? दूसरी बात यह है कि आज मूसल या दूसरे इलाकों में जहां इनका कब्जा हुआ है, हर वो बाप खून के आंसू रो रहा है जिसकी बेटी जवान है, क्योंकि जिहादुन निकाह के नाम पर ये लोग हर घर में जाके खटखटा रहे हैं और वहां से लड़कियां उठा उठा कर लिए जा रहे हैं। ये सुन्नियों पर सब अताब नाजिल हो रहा है, सुन्नी बेचारे जो है वो पीसे जा रहे हैं और ये नाम जो सुन्नियों का लेकर कर रहे हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाने की बहुत पुरानी कोशिश इसराइल की और अमेरिका की है। पहले इसराइली कहते रहे, हमेशा से बात कहते हैं, और उनका जो चीफ था एरन लर्मैन, उससे मैंने खुद बात की थी, उसने ये कहा था कि शिया हमारे खिलाफ सिर्फ शिया हैं, हमारे खिलाफ हथियार उठाने वाले शिया हैं, बाकी खित्ते का कोई सुन्नी हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन वो हमेशा इस बात को छुपाते हैं कि शियों की लड़ाई इसराइल से किस बात की है? क्या शियों की जमीन इसराइल ने ले ली है? क्या शियों के इलाके जमीन इसराइल ने हड़प कर ली है? शियों की लड़ाई है तो सुन्नियों के लिए है, शियों की लड़ाई है तो सुन्नियों की खातिर है। फिलिस्तीन का अवाम कितने परसेंट शिया है उसमें? फिलिस्तीन में ये लड़ाई किसके लिए शिया लड़ रहा है? या शिया हक के लिए लड़ रहा है? जो हक बात है उसके लिए लड़ रहा है? बैतुल मुकद्दस तमाम मुसलमानों का है। तो इस वक्त उनको बहाना यह चाहिए है सारी दुनिया में कि शिया सुन्नी के नाम पर मुसलमानों को बांटा जा सके और जितने लोग दहशतगर्दों के साथ आ सकते हैं वो आ जाएं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इस वक्त दुनिया बहुत अकलमंद हो गई और लोगों के समझ में आने लगा है। अब आज हमारे अखबार में भी यह खबर छपी और दूसरे अखबारों में भी कि जो दाश ने अपना नया झंडा, जो अपना नया नक्शा जारी किया है उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उस शिया इलाकों से दिखाया कि सऊदी अरब भी है। तो ये बात तो सऊदी अरब को खुद सोचना है कि इसके बाद क्या होने वाला है, अगर यहां से पसपाई के बाद वो जॉर्डन में जाएंगे या फिर उनको सऊदी अरब के यहां जाकर हंगामा करना पड़ेगा। और सऊदी अरब की फौज की जो हालत है वो सब जानते हैं दुनिया में कि वो किसी काबिल नहीं, किसी से लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो ये सारे जो शिया सुन्नी के मसले उठाए जा रहे हैं ये एक साजिश के तहत अमरीका और इसराइल ने उठाए हैं और हर आदमी जानता है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, ये तकफीरियों की लड़ाई है मुसलमानों के खिलाफ, ये खारजियों की लड़ाई है मुसलमानों के खिलाफ। हम जानते हैं कि कोई भी सुन्नी इनके साथ नहीं। जब शाम के सुन्नियों ने इनका साथ नहीं दिया तो इराक के सुन्नी कहां से साथ देंगे? शाम में तो ये बहुत कहते रहते थे कि हाफिजुल असद ने ऐसा किया और उनके बेटे ने बशारुल असद ने ये किया, सब कहते रहते थे, लेकिन वहां के सुन्नी मुफ्ती दीन ने हमेशा, सुन्नी मुफ्ती आजम ने हमेशा बशारुल असद का साथ दिया और वहां की फौजों का साथ दिया। तो जब ये वहां पर शिया सुन्नी नहीं करा पाए तो इराक में कहां से करा पाएंगे, जहां 1000 साल तक, यह खास बात है कि 1000 साल तक इराक पर सुन्नियों ने हुकूमत की, शिया अक्सरियत में होने के बावजूद शियों ने हुकूमत का मुतालबा नहीं किया, ना कभी उसके लिए खड़े हुए ना उसके लिए झगड़ा किया। लेकिन अब जब जमहूरियत आई और 65-70% अवाम को ताकत मिल गई है तो शिया सुन्नी के नाम पर उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां की वो मुंतखबा हुकूमत है। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है जो चल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुसलमान, आज का मुसलमान इतना बेवकूफ है और वो ये बात मान लेगा।
ये बहुत शुक्रिया आपका।
शिया सुन्नी लड़ रहे हैं या सुन्नियों के लिए लड़ रहे हैं? ना ये शियों के लिए लड़ रहे हैं ना ये सुन्नियों के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं अमरीकी मफादात और इसराइली मफादात के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका।
मानना है कि जिस दिन जितना मुसलमानों को कमजोर कर सको उतना बेहतर होगा।
बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा। मुक्तदा मंसूर साहब, अमरीका हो या मगरिब, वो जमहूरियत के चैम्पियन अपने को कहलाने में ज़रा बराबर भी चूकते नहीं हैं, यानी वो हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं। आज इराक में अप्रैल के महीने में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर एक नई पार्लियामेंट आया चाहती है। अब जब नई पार्लियामेंट आया चाहती है, नई हुकूमत बनना चाहती है, आवाम की मुंतखब हुकूमत, तो अब ये क्यों कहा जा रहा है कि वसीउल बुनियाद हुकूमत बननी चाहिए, ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें हर गुरों के, हर कबीले के लोग शामिल हों? एक तो ये कि जब मुंतखब हुकूमत है, आवाम ने जिसको वोट दिया है, हुकूमत बनाने का हक उसी को है, एक ये बात अपने का। दूसरी जहाँ तक ये बात है कि हर ग्रोह के लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो जो इराक़ का सिस्टम हुकूमती आप देख लें, पार्लियामेंट जो होता है वो सुन्नी होता है, सदर जो है वो कुर्द है, कुर्द भी सुन्नी होते हैं, वज़ीर ख़ारजा जो है वो कुर्द है, कुर्द भी सुन्नी होते हैं, वज़ीर आज़म शिया होता है, तो हर तबके के लोग, हर ग्रोह के लोग उसमें शामिल हैं। तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि हर ग्रोह की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जबकि अवाम ने मुंतखब किया है लोगों को, तो जो मुंतखब है वो हुकूमत बनाए? एक दूसरी बात, अगर आप वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात करते हैं तो बहरीन में भी तो यही मुतालबा किया जा रहा है, वहाँ पर उनकी हिमायत क्यों नहीं करते?
देखिए जरा, मसला जो बुनियादी है यहाँ पर, और वो मसला असल मसला बन रहा है, वो ये है कि उन्हें जमहूरियत सिर्फ अपने माशरों के लिए दरकार है, उन्हें जमहूरियत जो है वो मुस्लिम माशरों के लिए या उन ममालिक के लिए जो कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, उनसे उनको वहाँ पर जमहूरियत से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि वो एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं सऊदी अरब के लिए, दूसरी करते हैं बहरीन के लिए, तीसरी करते हैं शाम के लिए, और चौथी करते हैं पॉलिसी वो इख्तियार इराक़ के लिए। अब इराक़ में जो भी अक्सरियत होगी, जो जमात अक्सरियत लेकर आएगी, वो चाहे शिया हो, सुन्नी हो, कुर्द हो, कोई भी हो, वो उसको इख्तदार मिलना चाहिए, और ये जमहूरी तरीक़ाकार है। बरतानिया में भी यही प्रैक्टिस है, फ्रांस में भी यही प्रैक्टिस है, अमेरिका में भी यही प्रैक्टिस है। तो आप इन ममालिक के लिए ये आप शर्त लगाने वाले कौन होते हैं कि वसीउल बुनियाद? वो तो वो खुद लोग बनाएंगे। और इराक के आईन में तो वजाहत मौजूद है कि सदर कुर्द होगा, वजीर आजम फलां कम्युनिटी का होगा, स्पीकर फलां कम्युनिटी का होगा, उस आर्मी का चीफ फलां कम्युनिटी का होगा, वजीर खारजा फलां कम्युनिटी का होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब एक आईन में चीज़ें मुत्तफ़िका तौर पर तय कर ली गई हैं तो फिर बैरूनी ताकतों को, बैरूनी क़ुव्वतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन असल मसला देखिए, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि पहली आलमी जंग के बाद जिस तरह इस खत्ते को रीस्ट्रक्चर किया था अपने मफाद में बरतानिया ने, क्योंकि उस वक्त बरतानिया सुपर पावर था, आज अमरीका इसे रीस्ट्रक्चर करना चाहता है। उस वक्त उन्होंने बिलफोर मुआहदे के तहत इसराइल का वजूद लाए थे, अब इसराइल को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए इस खत्ते में वो तमाम ये तकसीम ला रहे हैं। देखिए मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि अमलन जो बात अभी शमसी साहब ने की या वास्ती साहब ने की कि कोई तकसीम नहीं है शिया सुन्नी की, ये वो अनासिर हैं कि जो नाम लेकर जो शिया सुन्नी की तकसीम करते हैं, ये तो एक मखसूस ग्रोह है और जो ये चाहता नहीं है कि यहाँ पर एक तरह से मुस्लिम उम्मा की एक इत्तेहाद कायम हो सके, जो एक इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ सकें, ये वो कुव्वतें हैं और जिनका किरदार आज से नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1400 बरस से चला आ रहा है कि जिन्होंने रखने डाले हैं, जिन्होंने हुकूमतों को ख़त्म किया है, जिन्होंने बाकायदगी के साथ खुलफाए राशिदीन पर हमले किए हैं, ये वो उन लोगों में से है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये वो अनासिर हैं कि जो मुसलमानों में नफ़रतें पैदा करते हैं, नफ़रतें बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों में तकसीम दर तकसीम के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अमेरिका या बरतानिया, ये तमाम ममालिक दरअसल, अगर ये बात, अगर ये फार्मूला हम तस्लीम कर लें कि इराक के अंदर जो बात अमेरिका कह रहा है, तो फिर वो बहरीन में भी अप्लाई होना चाहिए, वो सऊदी अरब में भी अप्लाई होना चाहिए और खलीज के दीगर ममालिक में भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन वो नहीं होने देना चाहते, वो सिर्फ इराक को जो है वो अपने अजाइम का जो हथकंडा बनाना चाहते हैं और उसकी वजह ये है कि इसराइल के लिए इराक सबसे बड़ा इस खत्ते में ख़तरा बना हुआ।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। ताहिर वासी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब इराक की बात आती है तो मगरबी ममालिक और सऊदी अरब ये कहते हैं कि वहाँ अक्सरियती शिया आबादी वाली हुकूमत सुन्नियों के हकूक़ नहीं देती, जबकि स्पीकर पार्लियामेंट जो है वो सुन्नी होता है, वज़रा सुन्नी होते हैं, कुर्द वो भी सुन्नी है, वज़ीर ख़ारजा उनका होता है, सदर उनका होता है और सब मिलजुल के वहाँ रहते हैं, लेकिन इसराइल की बातें की जाती हैं। जब बहरीन की बात आती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि एक अक्सरियती तबका जो है वो अकलियती सुन्नी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है, वहाँ इस तरह से जो है वो सूरत हाल को मोड़ने की कोशिश करते हैं। मिस्र में तो सभी सुन्नी हैं, वहाँ क्यों एक दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है?
खूबसूरत सवाल है और आपके तमाम नाज़रीन को आपके सवाल में ही आपका जवाब जो है वो मिल रहा होगा कि बुनियादी तौर पर इनका ना इस बात से मकसद है कि कौन सी अक्सरियती हुकूमत किस जगह, अक्सरियती लोग जो हैं किस मुल्क में हुकूमत करते हैं और किस मुल्क की अक्लियत को अक्सरियत दबा रही है, तो इनको इन दोनों बातों से गरज नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया कि अगर इनको अक्लियत से प्यार होता और अक्लियत की ये बात करते तो शिया अक्लियत को जो सलूक सऊदी अरब में हो रहा है तो ये वहाँ पर शिया अक्लियत की बात करते, अगर इन्हें अक्सरियत से प्यार होता और अक्सरियत की हुकूमत ये लाना चाहते तो ये बहरीन में अक्सरियती हुकूमत को आने देते, और अगर इन्हें इराक़ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि इराक़ में जो है मुत्तहिदा मिलके नहीं रह रहे तो इनकी ये परसेप्शन जो है ये मीडिया में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत परसेप्शन है, और ये उनको उस वक्त तकलीफ़ बिल्कुल नहीं थी जब सद्दाम की हुकूमत वहाँ इतने अरसे से रही। और मैं ये बात कह के आगे आपके जवाब की तरफ आता हूँ कि इनके यहाँ इराक़, अब मैं जो मीडिया अगर आप यहाँ का देख रहे हों, BBC, CNN और ये जितना इनका मीडिया है, ये ऐसा बताता है कि शायद इराक़ की हिस्ट्री सद्दाम से शुरू हुई है। तो ये इस बात को भूल जाते हैं कि सद्दाम के लाने में इनका क्या हाथ था, सद्दाम को कितने लोगों को कत्ल करके सद्दाम यहाँ आया। तो अब मैं आता हूँ कि अगर इजिप्ट में ये सूरत हाल है, वहाँ पे जो शिया सुन्नी नहीं है, वहाँ पे तो सुन्नी हुकूमत है, तो वहाँ पे इनको क्या मसला दरपेश हुआ कि वहाँ पे इन्होंने आपस में लड़ाया और एक आदमी को जो वहाँ पे अब वोट लेके आया है जो मुर्सी की हुकूमत को ख़त्म किया। तो जैसा कि मुक्तदा साहब फरमा रहे थे, ये समझते हैं कि मुसलमानों के ममालिक में किसी भी डिक्टेटर से, किसी भी आमिर से और किसी भी उस शख्स से जो वेस्ट की ज़ुबान बोलता है, इनको डीलिंग करना बहुत आसान लगती है। ये उससे वो काम करवा सकते हैं जो ये करवाना चाहते हैं, ये उससे कैंप डेविड करवा सकते हैं, ये उससे जहां चाहे घुटने लगवा सकते हैं, उसका अंगूठा किसी भी साफ कागज़ पर लिखवा कर अपनी मर्जी की तहरीर उस कागज़ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी इस्लामी मुल्क में, चाहे वो इराक़ हो या चाहे वो कल का इंशाल्लाह सऊदी अरब हो या बहरीन हो, जहाँ पर अक्सरियती जो है अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, वहां पर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल जो हैं ये अपनी मर्जी के अहकामात उन ममालिक पर नाफिज नहीं कर सकते, ये उन ममालिक में अपनी मर्जी की सौदेबाजी नहीं कर सकते, ये उन ममालिक से अपनी मर्जी का जो है तेल बरामद अपनी प्राइस पर नहीं कर सकते। इसलिए इनको इससे गरज नहीं है कि किसी मुल्क में जमहूरियत है इस्लामी मुल्क में या जमहूरियत नहीं है, या अक्सरियती हुकूमत है या अक्सरियती हुकूमत नहीं है, या अकलियतों के हकूक गसब हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक में जो हुक्मरान हो वो हो जो अमेरिका के इशारों पर नाचता हो और इसराइल के लिए नुकसान साबित ना हो। इसलिए इन्होंने मिस्र में अवामी नुमाइंदा हुकूमत ख़त्म करके, हालांकि मैं मुर्सी की हुकूमत के कभी इतना हमायती नहीं था उनके अपने कामों की वजह से, लेकिन बहरहाल वो एक नुमाइंदा हुकूमत थी, वो वोट लेकर वहां से आई थी और उस प्रोसेस को जिंदा रखना चाहिए था। तो ये उस शख्स को लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो वोट के जरिए आ जाए, चाहे वो धांधली के जरिए आ जाए, चाहे वो इनकी मदद से आए, जिस जो इनके इशारों पर नाचता हो और जो इसराइल के लिए खतरा ना बने, जहां से ये सस्ता तेल खरीद सकें और उस मुल्क के जितने मादनी वसाइल हैं और दूसरे कुदरती मसाइल हैं उनको बआसानी अपने मुल्कों की आवाम के लिए और अपने सरमायादाराना निज़ाम को मजबूत कर सकें। इनको किसी जमहूरी निज़ाम से, किसी अकलियती से तबके से जो मुसलमान ममालिक में है या अक्सरियती तबके से कोई प्यार नहीं।
बहुत शुक्रिया आपका। शकील शमसी साहब, आप देखें कि जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद फरमाया कि इनकी कोशिश ये थी कि 3-4 सूबों पर इराक़ के कब्ज़ा कर लें और फिर एक अपनी मर्ज़ी की हुकूमत का ऐलान कर दें, उसमें नाकाम रहे। और जाहिर है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा है उसमें इराक़ को टुकड़े करने की बात की गई है, सभी जानते हैं। तो अब जब इसमें वो नाकाम हो गए तो क्या ये समझा जाए कि कुर्दिस्तान को इराक से अलग करने की साजिश हो रही, जैसा कि अमेरिकी वजीर खारजा ने कुर्दिस्तान का दौरा किया, विलियम हेग ने कुर्दिस्तान का दौरा किया, तुर्की और इसराइल की तरफ से इस सिलसिले में बयान भी आ गए। इसराइल की काबीना ने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कुर्दिस्तान अलहदगी का ऐलान करता है तो हमारे उसके ताल्लुक बहाल हो जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा?
देखिए, कुर्दिस्तान को जहाँ तक मामला है, कुर्दिस्तान में तो अमेरिका ने 1991 में ही तकरीबन उसको इराक से अलग कर दिया था। ये जो एक साजिश की थी, नो फ्लाई जोन वगैरह बना दिया था और उनको जिस तरीके से तैयारियां कराई गई थी तो वो एक किया गया था, और उसका कोई इराकी हुकूमत से नाराजगी या उसका सवाल नहीं उठता था। ये सुन्नियों की नाराजगी का एक बहाना बनाया गया कि सुन्नी तबका मार्जिनलाइज हो गया है, सुन्नी तबका हाशिए पर हो गया है, सुन्नी तबके के साथ ये हुआ है। तो ये एक बहाने के तौर पर इसको चुना गया है। और बड़े दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ सिर्फ सीरिया और इराक में तो शिया सुन्नी की बात हो रही है, यही तबका पाकिस्तान में खड़ा होकर लड़ रहा है तो तहरीक तालिबान नाम है उसका, यही तबका नाइजीरिया में खड़ा होकर लड़ रहा है तो बोको हराम नाम है उसका, यही तबका सोमालिया में लड़ रहा है तो उसका नाम अलशबाब है, माले में है तो अलशबाब के नाम से लड़ रहा है, हिंदुस्तान में अगर वो करते हैं बदमाशियां आकर तो यहाँ लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और इस तरीके के जो दूसरे बनाते हैं। तो पूरी आइडियोलॉजी जो है, जो झगड़ालू आइडियोलॉजी है, जो तकफीरी आइडियोलॉजी है, वो अलग अलग नामों से लड़ रही है अलग अलग जगह पर। यहां पर तो शिया सुन्नी का एक बहाना बना लिया, जैसे साफ जाहिर है। नाइजीरिया में क्या किया, क्यों लड़कियों को, 300 लड़कियों को अगवा करके बोको हराम लेकर चला गया, और उनमें भी मेजोरिटी मुसलमान लड़कियों की है। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है भाई अली अब्बास साहब के ये लोग जो है, ये इराक की जो तकसीम का एक फार्मूला बनाया गया उसके लिए आए। ये इराक की तकसीम का 1991 में तय हो गया था कि इराक को सुन्नी, शिया और कुर्द रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये पसंद नहीं करता कि कोई ऐसी ताकतवर हुकूमत हो कि जो मगरिब के किसी मुल्क को आंखें दिखा सके। तो ये उसकी एक साजिश है और उसके लिए उन्होंने शिया सुन्नी का बहाना चुना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाब हो पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि कुर्द इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इराक से अलग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे उनको कुछ फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। अभी शायद उनको एक छोटा सा मुल्क के तौर पर मिलने की बात हो रहा, अमेरिका भी साथ दे और इसराइल भी साथ दे, लेकिन बड़े जो एक वसी तर बुनियादों पर सिवाय कुर्दों के नुकसान का और कुछ नहीं मिलने वाला है।
बहुत शुक्रिया आपका। मुक्तदा मंसूर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर लिया जाए, फ़र्ज़ ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ करने में कोई गलती मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि कुर्दिस्तान जो है वो अलग हो जाता है, और अगर कहीं ना कहीं मगरबी ताकतें और इसराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो आप सऊदी अरब का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं?
अव्वल तो ये कि कुर्दिस्तान का जो ये फार्मूला है ये काबिल अमल नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर ये इराक की बुनियाद पर नहीं बनेगा, फिर इसमें ईरान के भी कुर्दों को शामिल करेंगे, फिर तुर्की के कुर्दों को भी शामिल करेंगे, फिर शाम के बॉर्डर के इलाके में, तो ये एक बहुत बड़ा एक कजिया खड़ा हो जाएगा, वो मामला कामयाब नहीं हो पाएगा और किसी तौर पर भी ये नहीं चल पाएगा। दूसरी बात ये कि खलीज के अंदर मुझे नहीं लगता कि अवामी अब जो शऊर है, बेदारी है, सियासी बेदारी है, उसका रास्ता रोका जा सकेगा। और ये जो अमेरिकन समझते हैं कि हम बहरीन के अंदर फलां की हुकूमत के ज़रिए से कर लेंगे, सऊदी अरब में फलां हुकूमत से कर लेंगे, अब ये मामलात अगर इन्होंने छेड़े और इन्होंने इन मामलात को जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की, तो फिर मामलात बहुत बदतर सूरत हाल में चले जाएंगे। इधर अफगानिस्तान में मामलात बदतर हो रहे हैं और दिसंबर इस 2014 के बाद वो तूफ़ानी ये बदतमीजी आपस में जो ग्रो लड़ेंगे और जिस तरह लड़ाई टकराव होगा उसके शोले पाकिस्तान तक आएंगे। ये सारे मामलात जो है वो इनको समझने की ज़रूरत है और ये मामला शिया सुन्नी नहीं है, इसमें तमाम अकाबरीन को बैठ कर सोचना चाहिए कि ये वो अनासर हैं, ये वो तकफीरी अनासर हैं जो 1400 साल से मुसलमानों पर हमले करते आए, वो दोनों तरह के मुसलमानों पर हमले करते आए, लिहाजा इनसे बचने की ज़रूरत है। ये वाकईतन गैर मुल्की इशारों पर काम करते हैं और इन्होंने जो है इराक़ की यकजहती को ख़त्म करके दरअसल उस पूरे खत्ते के अंदर एक जेन्युइन मिडिल क्लास जहां मौजूद थी, जो तालीम में सबसे आगे मुद्दा, उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और वो एक ऐसा मुल्क पूरे खलीज के अंदर जिसकी इल्मी हैसियत थी, जिसके अंदर साइंटिफिक मामलात थे, उसको और ये कह देना कि जी वहाँ पर दीगर लोगों को शामिल किया जाए, जमहूरियत के अंदर अकलियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लोग जीत कर आते हैं और हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, लिहाजा अकलियत और अक्सरियत वहाँ पर अकीदे की बुनियाद पर नहीं होती जमहूरियत में। क्या अमरीका में अकलियत और अक्सरियत का तस्वुर जो क्या अकीदे की बुनियाद पर है, क्या बरतानिया में अकीदे की बुनियाद पर? ऐसा नहीं है। ये लोग, ये मगरब को चाहिए कि हम बदमाशियों से बाज रहे और लोगों को उनका हक जो है के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दें।
बहुत बहुत शुक्रिया मुक्तदा मंसूर साहब, शकील शमसी साहब और ताहिर वासी साहब, हम आप तीनों मौजूद मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहिज़ा फरमाया, बड़ी अच्छी बात कही मुक्तदा मंसूर साहब ने कि जमहूरियत में अकलियत और अक्सरियत का ताल्लुक अकीदे और मज़हब की बुनियाद पर नहीं होता। आज आप देखें हिंदुस्तान में भी जो ताज़ा तरीन जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी अकलियत में आ गई, वो उसमें सारे ही मज़हब के लोग शामिल हैं, वो पार्टी है जो अकलियत में आई है, ना कि कोई मज़हब। तो जब जमहूरियत की बात होती है तो वहाँ मज़हब या अकीदे का दखल नहीं होता है। इसी तरीके से इराक़ में एक जमहूरी हुकूमत है, एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन हुआ है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोटों के साथ आई है वो हुकूमत बनाने की अहल है और वही हकदार है और उसी को हुकूमत बनाना चाहिए। और यकीनी तौर पर मंगल को जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा और नई हुकूमत तश्कील पाएगी तो ये अमल और ये जमहूरी तरीक़ेकार दहशतगर्दों और उनके हामियों और सरपरस्तों के दहकते हुए लोहों पर ठंडे पानी का काम करेगा और उनके तमाम के तमाम मंसूबे धरे रह जाएंगे। और उनके मंसूबे तो उसी वक्त नाकाम हो गए थे जब इराक़ के बुज़ुर्ग मरजाए तकलीद या मराजे तकलीद और इसी तरह बुज़ुर्ग सुन्नी उलमा ने यह खुलकर कह दिया था कि ये जो कुछ हो रहा है ये तकफीरी ग्रोहों का पैदा करदा बहरान है और इस्तेमारी और इस्लाम दुश्मन क़ुतों का पैदा करदा बहरान है और पूरी इराकी कौम इन दहशतगर्दों के मुकाबले में मुत्तहिद है। और आपने देखा कि चाहे वो बसरा के अहले सुन्नत हों, चाहे बगदाद के अहले सुन्नत हों या दीगर इलाक़ों के कबायली अहले सुन्नत हों, चाहे वो अंबार का सूबा हो, चाहे वो दियाला का सूबा हो, चाहे वो तिकरीत का इलाका हो, चाहे वो सलाउद्दीन, हर जगह की सुन्नी शिया सब मुत्तहिद होकर अवामी रज़ाकार फोर्स में शामिल हैं, फ़ौज का साथ दे रहे हैं। मिस्र के दारुल इफ्ता ने इस बात का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान के बेशुमार अहले सुन्नत उलमा ने इस बात का ऐलान कर दिया, इसी तरीके से हिंदुस्तान में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के उलमा अहले सुन्नत ने इस बात का ऐलान कर दिया कि दाइश का सुन्नी मुसलमानों से दूर दूर का या इस्लाम से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बात से जुड़े दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।